का था, रूह वही रूप नया।
आप सुन रहे हैं कहानी अनोखी यात्रा और इसे लिखा है गी दमोपासा ने। कैनस के रेलवे स्टेशन से जब रेल चली तो डब्बा खचाखच भरा हुआ था। डिब्बे में बैठे सभी यात्रीगण एक दूसरे से वाकिफ थे, इसलिए हम लोगों ने परस्पर एक दूसरे से बातचीत करना आरंभ कर दी। हमने जैसे ही टेरोस्कोन स्टेशन पार किया तो एक शख्स बोला, यही वो स्थान है जहां पर रेल में प्रायः कत्ल और डकैती होती है। फिर हम लोग उस खतरनाक और रहस्यमय कातिल के विषय में चर्चा करने लगे जो आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, और पिछले 2-3 वर्षों से वो रेलगाड़ी में किसी ना किसी का कत्ल करता आ रहा है। सभी के हृदय में अनजान आशंकाएं और खौफ व्याप्त था। सभी ने अपनी निजी राय प्रदर्शित की। अंधकार में शीशे चढ़ी खिड़कियों के बाहर झांक झांक कर डिब्बे में बैठी स्त्रियां खौफ के मारे बेतरह कांप रही थीं। उन्हें लगता था कि बस एकाएक रेल के डिब्बे के द्वार में से घुसकर कोई शख्स खड़ा हो जाएगा। हम लोग इस प्रकार चलती ट्रेन में ऐसे ही किसी शख्स से टकरा जाने की मुमकिन संभावना और किसी भयानक घटना या कांड हो जाने के विषय में चर्चा करने लगे। तमाम यात्रियों ने ऐसी स्थिति में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में पूर्ण हौसले के साथ स्थिति का सामना करने और हमला करने वाले शख्स को धर दबोचने का दावा किया। हमारे साथ डिब्बे में बैठा हुआ एक चिकित्सक जो हर सर्दियों में दक्षिणी फ्रांस जाया करता था, जब उसकी बारी आई तो उसने भी सभी को एक किस्सा सुनाने की इच्छा जाहिर की। वो कहने लगा, मुझको इस तरह के किसी हादसे में अपना हौसला या निर्भयता आजमाने का अवसर ही नहीं मिला, किंतु मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जो कभी मेरी मरीज थी, अब वो जिंदा नहीं है। उसके साथ एक दफा ऐसे ही रेल में सफर करने की सबसे विचित्र और रोचक घटना गुजरी थी। वो हादसा खुद में बड़ा ही अनोखा और बेहद प्रभावशाली था। वो एक रूसी स्त्री थी, कैमरेसे मैरी सारियानो, एक बला की खूबसूरत हसीन स्त्री। हम सभी फ्रेंच ये तो जानते ही हैं कि रूसी स्त्रियां किस कदर खूबसूरत होती हैं, या यूं कहें कि हम लोगों को तो वो अप्सराएं लगती हैं। छोटी छोटी नाक, उनकी कोमल स्निग्ध मुखाकृति, नीली और भूरी आभा लिए हुए चेहरों पर दृढ़ता से जमी आँखें, उनकी अपनी स्निग्धता और सौम्यता जो कुछ ठंडी और साथ ही थोड़ी ही सख्त भी होती है। उसके साथ उनकी चंचलता, दूसरों को बींधने, सम्मोहित करने की अदा, कुछ हद तक अहंकारी और कुछ सुकोमलता का भाव, कुछ समर्पित और कुछ अखड़ भी, जो फ्रेंच वासियों को बड़ा दिलकश लगता है। शायद ये अंतर महज प्रजातियों का अंतर होता है, जिसके कारण मुझे ये फर्क अनुभव होता आया है। अनेक वर्षों तक उसका पारिवारिक चिकित्सक ये देख रहा था कि उसे फेफड़ों की कोई बीमारी है, और वो बार बार उससे कह रहा था कि हवा पानी बदलने के लिए दक्षिणी फ्रांस जाए। वो सेंट पीटर्सबर्ग छोड़कर बाहर कहीं जाने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में पिछले पतझड़ में चिकित्सकों ने तमाम उम्मीदें जो थीं वो छोड़ दी। चिकित्सकों ने उसे जवाब दे दिया तथा उसके पति पर तमाम स्थिति साफ और स्पष्ट कर दी। ये सुनकर उसने अपनी पत्नी को तुरंत हुक्म दिया कि वो मोंटेनो के लिए निकल पड़े। उसने रेल पकड़ी। वो डिब्बे में नितांत अकेली थी। उसके साथ आया एक निजी नौकर करीब के ही एक सामान्य श्रेणी के डिब्बे में बैठा हुआ था। वो खिड़की से लगकर बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ी उदास। वो यात्रा के मार्ग में गुजरते पीछे छोटे गांव और मैदानी इलाकों को खामोशी से देख रही थी। वो स्वयं को जीवन में सर्वाधिक उपेक्षित
परित्यक्त सा महसूस कर रही थी।
उसके कोई संतान नहीं थी, कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, वो महज अपने पति के साथ थी। उसके प्रति पति का समस्त प्यार, अनुराग और अपनत्व सालों पहले ही समाप्त हो चुका था। उसके साथ आने के बदले उसके पति ने उसे संसार के अंतिम छोर के लिए अकेला भिजवा दिया था। गोया उसने अपनी पत्नी नहीं बल्कि किसी नौकर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा हो। तकरीबन प्रत्येक स्टेशन पर उतरकर उसका सेवक अपनी मालकिन के पास आकर पूछ जाता था कि उसको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। वो एक बुढ़ा नौकर था, गजब का निष्ठावान और आज्ञाकारी। वो अपनी मालकिन के कुछ भी कहे को निशब्द करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। रात घेराई थी, रेल पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ पैरों में खिंचाव था, वो पिछली रात को सो नहीं सकी थी। अचानक चलते वक्त उसके पति द्वारा रास्ते में खर्च के लिए दिए गए रूबल्स को निकालकर सहेजने लगी। उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें रखे तमाम चमकते हुए सिक्के अपनी गोद में गिरा लिए। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आकर उसके चेहरे से टकराया। हैरत से उसने अपना सिर ऊपर उठाया। डिब्बे का मुख्य द्वार अचानक से खुला। कमरे से मैरी ने जाने क्या सोचकर अपनी गोद में बिखरे सोने के सिक्कों को जल्दी से गर्म चादर से ढक दिया और थोड़ा इंतजार किया। कुछ पल ही गुजरे होंगे तभी वहां एक शख्स नजर आया। वो नंगे सिर था, उसके हाथों में चोट भी लगी थी। वो बेतरह हांफ रहा था और रात्रि कालीन सोने की अपनी पोशाक पहने हुए था। डिब्बे में आकर उसने द्वार बंद कर दिया और खामोशी से एक सीट पर बैठ गया और चमकदार आंखों से उसने सामने वाली सीट पर बैठी महिला मुसाफिर को घूरा। तब उसने अपनी कलाई में रुमाल बांध लिया जिससे खून बह रहा था। नौजवान स्त्री को लगा कि मारे खौफ के उसकी हालत खराब हो गई है। बेशक अभी आने वाले ने अवश्य ही उसे सिक्के गिनते देख लिया होगा। वो जरूर मेरे रूबल्स लूटने और मुझे कत्ल करने के इरादे से ही आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सामने बैठी स्त्री पर झपटने के लिए जैसे तत्पर ही था। अचानक शख्स ने कहा, मोहतरमा, आप तनिक भी घबराएं या डरे नहीं। स्त्री ने उस अनजान शख्स के आश्वासन पर कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ कह पाने के लिए उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। वो अपने दिल की तेज धड़कनों और कानों में मचती सनसनी को साफ महसूस कर पा रही थी। वो दोबारा कहने लगा कि मैं मुजरिम नहीं हूं। तब भी वो कुछ नहीं बोली। उसने शीघ्रता से हरकत की और दोनों घुटनों को झटके से मिला लिया। इस हरकत से उसकी गोद में पड़े सोने के सिक्के डिब्बे पे बिछे कालीन में एक एक करके यूं झरने लगे जैसे नालों से पानी बहता है। सिक्कों की इस वर्षा को देखकर उस शख्स को बड़ा विस्मय हुआ। वो अचानक झुक कर सिक्के बटोरने लगा। खौफ की मारी वो स्त्री अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। इस कारण उसकी गोद में जो बचे हुए सिक्के थे वे भी फर्श पर गिर पड़े। वो दौड़कर द्वार तक पहुंची और द्वार खोलकर बाहर छलांग लगा देना चाहती थी, लेकिन वो व्यक्ति समझ गया कि वो स्त्री क्या करना चाहती है। उसने दौड़कर उस स्त्री को अपनी बाहों में भर लिया और जबरन सीट पर बैठा दिया और उसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, सुनिए मोहतरमा, मैं कोई चोर उचक्का या शातिर मुजरिम नहीं हूं। और उसने कहा कि इसका साक्ष्य ये है कि मैं आपको आपके गिरे तमाम सिक्के उठाकर लौटा रहा हूं। मेरा सब कुछ लुट चुका है, मुझे तो आप बिल्कुल मरा हुआ ही समझिए, बशर्ते आप मुझे देश की सरहद पार करने में सहायता करें तो।
मैं आपको और अधिक कुछ नहीं बता सकता, उसने कहा। आगामी एक घंटे में हम रूस की सीमा के अंतिम रेलवे स्टेशन पर होंगे और उसके अगले 1 घंटे 20 मिनट में देश की आखिरी सरहद पार कर जाएंगे। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, मुझे नहीं बचाया, तो मैं पूरी तरह तबाह हो जाऊंगा। और इसके सिवा मैडम, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में अपने जमीर की आवाज के खिलाफ ना ही किसी की हत्या की है और ना ही चोरी या डकैती की है। मैंने अपने जमीर के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया है, ये सब मैं शपथ उठाकर कह सकता हूं। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर वो फिर घुटनों के बल बैठकर डिब्बे के फर्श पर बिखरे सोने के सिक्के उठाने लगा। उसने लुढ़ककर सीट के नीचे चले गए सिक्कों को भी तलाशा और जब स्त्री का चमड़े का छोटा सा पर्स उन उठाए सिक्कों से दोबारा भर गया तो बिना एक शब्द कहे खामोशी से वो पर्स उस महिला को थमा दिया और डिब्बे के किनारे वाली सीट पर बैठ गया। अब वे दोनों एक दूसरे से भयभीत या घबराए हुए नहीं थे, न स्त्री न पुरुष। वो स्त्री खामोश अचल बैठी हुई थी। अब भी वो मारे खौफ के बेहोश ही होने वाली थी, पर धीरे धीरे सहज होती चली गई। और जहां तक उस व्यक्ति का सवाल था, वो भी अपने स्थान पर बिना हरकत किए जड़वत बैठा रहा। उसने अपनी दृष्टि सामने गड़ा रखी थी। उसकी आंखों में गहरा पीलापन और निराशा थी, गोया वो निर्जीव तथा संज्ञा शून्य हो गया हो। यदा कदा वो अनायास उसे देख लेती थी और फिर जितनी शीघ्र होता उतनी ही जल्दी अपनी नजर हटा लेती। सामने बैठा शख्स तकरीबन 30 के इर्द गिर्द का रहा होगा, बेहद सुंदर, स्वस्थ और अच्छा खासा। उसके हाव भाव और व्यवहार में पूरी शराफत झलक रही थी। रेल धीरे धीरे गुजर रही थी, बीच बीच में इंजन की सीटी भी गूंज रही थी। कभी उसकी गति मंद हो जाती और उसके बाद वो पहले से भी तेज गति से दौड़ने लगती। फिर अचानक उसकी गति बेहद धीमी हो गई। कई दफा उसने सीटी बजाई और आखिरकार पूरे तौर पर रुक गई। द्वार पर नौकर ईवान आया ताकि वो अपनी मालकिन से कुछ आदेश ले सके। कामरे से मैरी ने कांपती आवाज में एक दफा पुनः उचटती नजर से अपने नावाकिफ अनजान यात्री को देखा और फिर अचानक अपने नौकर से बोली, ईवान, तुम अपने स्वामी के पास वापस लौट जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर नौकर हैरान रह गया। उसने विस्मित आंखों से अपनी मालकिन की तरफ देखा, तनिक खकलाया और बोला, पर मालकिन, कामरेसे ने आगे ये भी कहा, नहीं, तुम्हें और साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना निर्णय बदल दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मालिक के पास रूस में ही रहो, तुम्हारे लौटने के लिए ये किराया रखो, बस तुम मुझे अपना कोट और टोपी ला कर दे दो। मिसेस कामरेसे ने ये सब अपने नौकर से कहा। इसके बाद पुराना निष्ठावान नौकर मालकिन की बात सुनकर हतप्रभ सा रह गया। उसने अपने सिर से टोपी उतारी तथा कोट भी उतार कर मालकिन को दे दिया। उसने बिना कोई सवाल किए अपने मालिकों के आदेश का पालन किया। वो अपनी मालकिन की सदैव बदलने वाली सनक से बखूबी वाकिफ था और अपनी आंखों में आंसू लिए खामोशी से द्वार से हट गया। रूस की आखिरी सीमा की तरफ ट्रेन बदस्तूर दौड़ती जा रही थी। फिर कामरे से मैरी ने डिब्बे में बैठे अपने सहयात्री से कहा, ये चीजें आपके लिए हैं, मैं जो कुछ भी आपके लिए कर रही हूँ उसके पीछे महज एक शर्त है कि आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। आप मुझे किसी तरह का शुक्रिया अदा करने या किसी और कारण से भी मुझसे नहीं बोलेंगे। अनजान शख्स ने बिना एक शब्द कहे ससम्मान सिर झुकाकर उस महिला का धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया। एक बार फिर जल्दी ही रेल एक दूसरे स्टेशन पर रुकी और कुछ फौजी अधिकारी वर्दी पहने डिब्बे में घुसे। कामरेसे ने अपना परिचय पत्र तथा पासपोर्ट दिखाए और डिब्बे में पीछे की सीट पर बैठे शख्स की ओर संकेत करते हुए बोली, ये मेरा नौकर ईवान है, ये रहा इसका पासपोर्ट। तहकीकात के पश्चात रेल आगे बढ़ गई। अगली सुबह जब वे जर्मनी के एक स्टेशन पर रुके तो वो अनजान शख्स खामोशी से नीचे उतर गया और ऐन द्वार के सामने खड़ा होकर बोला, मैडम मैं अपना करार तोड़ रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे आपका नौकर छिनवा दिया है, इसलिए उपयुक्त होगा कि मैं उसकी पूरी भरपाई करूँ, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उस स्त्री ने बड़ी ही रुखाई से उत्तर दिया, जाइए और मेरे सेवक को ढूंढकर मेरे पास भिजवा दीजिए। वो उस महिला के आदेश का पालन करने के लिए चला गया। जब वो महिला रेल से उतरकर प्लेटफॉर्म पर बने रेस्तरां में गई तो उसने अपने से काफी दूर खड़े होकर उसी की तरफ ताकते हुए उस अपरिचित सहयात्री को देखा जो रेल में उसके साथ यात्रा कर रहा था। इतना कहकर चिकित्सक कुछ पलों के लिए रुका और फिर बोलना आरंभ किया, हाँ एक दिन जब मैं अपने दवाखाने में बैठा मरीजों को देख रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पास एक लंबे कद का युवा शख्स आया और आकर मुझसे बोला, श्रीमान मैं आपसे आपकी मरीज कामरेसे मैरी सारनाओ के बारे में पूछने आया हूँ, हालांकि वो मुझे नहीं जानती है लेकिन मैं उसके पति का मित्र हूँ। मैंने जवाब दिया, उनकी हालत नाजुक है और वो कभी भी रूस वापस नहीं जा पाएंगी। मेरा उत्तर सुनकर वो शख्स रोने लगा, फिर वो उठा और एक शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। उसी रात मैंने कामरेसे को बताया कि एक अनजान शख्स मेरे पास आकर उसके बारे में पूछ रहा था। मेरी बात सुनकर वो तनिक भावुक हो गई और उसके बाद उसने मुझे वो तमाम किस्सा सुनाया जिसे अभी अभी मैंने आप लोगों को कहा है। उसने ये भी कहा कि वो उस शख्स को कतई नहीं जानती थी, वो परछाई के मानिंद उसके पीछे लगा था, वो हर दफ़ा उसे अपने सामने देखती थी और जब भी बाहर जाती थी वो एक विचित्र दृष्टि से उसे देखता था, लेकिन उसने उससे कभी बात नहीं की। वो कुछ देर रुकी और उसने फिर कहना शुरू किया कि आप देखें, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो अभी भी इस खिड़की के नीचे खड़ा होगा। वो अपनी आराम कुर्सी से उठी, खिड़की पर पड़े आवरण को एक तरफ खिसकाया और पूरे यकीन के साथ उसने उस शख्स की तरफ संकेत किया जो मुझसे मैडम कामरेसे के तबीयत के बारे में पूछने आया था। अभी भी वो खिड़की के नीचे बागीचे में एक बेंच पर खामोश बैठा हुआ था। उसकी दृष्टि उठी, उसने मेरी खिड़की की तरफ देखा, उसने हम लोगों को पहचान लिया। अब वो अपने स्थान से उठा और एक दफा भी पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। हाँ उसके बाद भी मैंने काफी वक्त तक दोनों के बीच एक अपरिचित असाधारण मूक स्नेह को देखा। वे दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे, अनजान थे। वो शख्स उस स्त्री को बलि वेदी से प्राण दान दिए जानवर की तरह प्रेम करता था जो अपने मालिक के प्रति तमाम जिंदगी मरते दम तक पूरी तरह समर्पित निस्वार्थ और निष्ठावान होता है। वो हर दिन मुझसे पूछने आया करता था कि अब वो कैसी है। वो ये समझता था कि मैंने इस रहस्य को पवित्र कर दिया है। वो उसको प्रतिदिन निस्तेज कमज़ोर और पीला पड़ते देखता था और गिरती हुई सेहत को देखकर फूट फूट कर रोता था। कामरेसे ने मुझसे कहा था, मैंने उससे महज एक दफ़ा बात की है पर मुझे लगता है कि जैसे मैं पिछले 20 वर्षों से उसे जानती हूँ। मैं देख सकता था और समझ सकता था कि वो बड़ी खुश है कि वो इस बड़े से संसार में किस तरह अकेली है और ये भी भली प्रकार जानती है कि दिन ब दिन उसकी स्थिति गिरती जा रही है। उसे इस बात की बेहद रूहानी खुशी थी कि कोई शख्स उसे संपूर्ण सम्मान के साथ निरंतर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर है। वो अब भी उसके गर्व और जिद के सामने नतमस्तक, समर्पित और निस्वार्थ रूप से उपस्थित था। जिद के कारण कामरेसे ने उस अनजान और अपरिचित स्नेही से मिलने की बात कहने, यहां तक कि उसका नाम तक पूछे जाने से मुझे मना कर दिया था। वो बोला करती थी,
नहीं नहीं, बात करने से हमारी पवित्रता और मित्रता खतरे में आ जाएगी।
हम लोगों को इसी प्रकार एक दूसरे से अनजान और अपरिचित बने रहना होगा। जहां तक प्रश्न था, वो भी डॉन क्विज़ोट की भांति उसका दीवाना था। उसने उससे कभी मिलने का प्रयास नहीं किया। वो उससे कभी बात ना करने का करार निभाना चाहता था, वो करार जो उसने उसे रेल के डब्बे में दिया था। कामरेसे अक्सर अपने उदास, कमजोर और अकेलेपन के पलों से अपनी आराम कुर्सी से उठकर खिड़की के पर्दे को तनिक हटाकर ये निहारा करती थी कि उसकी खिड़की के समक्ष नीचे बेंच पर वो बैठा है या नहीं। वो उसको देख लिया करती थी और खामोश सिर झुकाए, गमगीन, हताश, तन्हा बेंच पर उसे बैठा भी देखती थी। वो उसे देखकर लौट आती थी और जाकर पलंग पर लेट जाती थी। एक दिन सुबह 10 बजे वो मर गई। जैसे ही मैं उसके होटल से निकला, वो मुंह उतारे मेरे पास आया। शायद उसे उसके मरने की सूचना पहले ही मिल गई थी। वो मेरे करीब आकर बड़े रुआंसे अंदाज में मुझसे बोला कि मैं उसे आपकी उपस्थिति में बस एक पल देखना चाहता हूँ। मैंने उसकी बाह थामी और उसे होटल के कमरे में ले गया। जब वो उस मृत स्त्री के करीब पहुंचा, तो उसने उसका हाथ थामा और बहुत सम्मान से धीरे धीरे देर तक चूमता रहा और उसके बाद एक विक्षिप्त की तरह बदहवास सा वहां से चला गया।
डॉक्टर फिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और थोड़ी देर बाद पुनः कहना शुरू किया,
बेशक ये रेल के सफर में किसी के साथ गुजरा सबसे अनुपम रोमांच है जो मैं जानता हूँ। ये भी कहा जा सकता है कि इंसान ही कभी कभार अजीबोगरीब सनक पाल सकता है।
इस बीच डिब्बे में ही बैठी स्त्री धीरे से बुदबुदाई,
वे दोनों व्यक्ति उतने भी दीवाने नहीं थे जितना कि आप दोनों सोच रहे हैं। वे दोनों किंतु आगे शब्द नहीं कह सकी और सिसक सिसक कर रोने लगी। हम लोगों ने उसे चुप कराने का बहुत प्रयास किया, यहां तक कि चर्चा का विषय भी बदल दिया। हम ये कभी नहीं जान पाए कि आखिर वो क्या कहना चाहती थी और उसका उस कहानी से क्या संबंध था।
आप सुन रहे थे कहानी अनोखी यात्रा। इसे लिखा था गीदा मोपासा ने और आवाज दी नैनी दीक्षित ने।